कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रिय मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आप निश्चय ही अपने जीवन में नई बातों को सीखेंगे एवं परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों में दूसरे राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इन अध्ययनों में हम देख रहे हैं कि उत्तरी राज के राजा और दक्षिणी राज के राजा किस प्रकार से अपने राज्यकाल को चलाते हैं। और इतना ही नहीं, हम दुष्ट राजाओं और अच्छे राजाओं को भी देख रहे हैं और हमें यह भी देखना है कि हम किन राजाओं को अच्छे रूप में देख सकते हैं। तो हमने यह भी देखा है कि अतल्याह को राज करने की ऐसी लालसा थी कि उसने अपने पोतों को ही मरवा दिया, परंतु अहज्याह की बहन यहोशेबा ने युवास को कोठरी में छिपा दिया। वह 7 वर्ष तक यहोवा के भवन में गुप्त रूप से बड़ा हुआ और 7 वर्ष की आयु में ही याजक यहोयादा ने उसे राजा घोषित किया। उसने अतल्याह को घात किया। तब हमने देखा कि युवास एक अच्छा राजा था। उसके युग में मंदिर का पुनर्द्वार हुआ और लोगों में आत्मिक जागृति आई। उसके स्थान पर उसका पुत्र अमस्याह राजा हुआ। वह भी एक अच्छा राजा था, जिसे आज हम अध्याय 13 में देखेंगे। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 13 में देखेंगे एलिशा के अंतिम कार्य। मित्रों, यह धर्मशास्त्र का एक कठोर भाग है, परंतु हमारे लिए शिक्षा का कारण है। राष्ट्रों के शासकों के लिए यह एक उत्तम भाग है और हम इसराइल और यहूदा दोनों राज्यों के बारे में देख रहे हैं। उत्तरी राज्य इसराइल, और इसराइल में 10 गोत्र थे और दक्षिण में यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र है, जो यहूदा राज्य भी कहलाता है। दक्षिण राज्य में दाऊद के वंशज राज कर रहे थे और यही वंशावली नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक चलेगी। जैसा हमने देखा है, आहाब और इजबेल की पुत्री, जिसने दाऊद के वंश में विवाह किया था, उसने तो दाऊद के वंश को लगभग मिटा ही दिया था। लेकिन हम देखेंगे इसराइल का राजा यहोआहाज, जिसे हम अध्याय 13 में पाते हैं। येहू के पुत्र यहोआहाज ने 17 वर्ष तक इसराइल पर राज किया। वह योराम की पापी मार्ग पर चला और सच तो यह है कि उसके राज में कोई घटना रोचक या रोमांचक नहीं घटी। कुछ लोगों का सोचना है कि पाप जीवन को उत्साह से भर देता है, परंतु सच तो यह है कि कुछ समय बाद पाप से अधिक उबाने वाली बात और कोई नहीं होती है। मेरे मित्रों, धनोर्पार्जन करते करते मनुष्य शराबी के समान एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जब उसके तुल्य उबाऊ और कोई नहीं होता और उसका जीवन उद्देश्य से वंचित हो जाता है। इसी प्रकार पाप करने वाले का जीवन भी होता है। इतिहास का यह समय अत्यधिक उबाऊ है। उत्साह तो तब आता है जब परमेश्वर कार्य करता है। मित्रों, आइए हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा एवास के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबाद के पुत्र यरोबाम, जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यरोबाम ही था जिसने इसराइल में बछड़े की उपासना आरंभ करवाई थी। उसने इसराइल को सच्चे परमेश्वर की उपासना से पथ भ्रष्ट करके पाप में डाला था। आहाब और इजेबेल ने राज्य संभाला तो उन्होंने तो पाप की सीमाओं को भी पार कर दिया। उन्होंने बाल की पूजा आरंभ की, जो शैतानी काम था। अब यहोआहाज अपने पिता येहू की नाई बाल देवता की पूजा से दूर रहता है और वह आहाब और इजेबेल की नाई पाप की गहराई में भी नहीं उतरता है, परंतु वह यरोबाम के तुल्य अधर्म के काम करता है जो बुरा ही था। मेरे मित्रों, हम देखेंगे यहोआहाज का मन फिराव। इसराइल के पाप के कारण परमेश्वर ने आराम को उनके विरुद्ध में खड़ा किया। तब हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, इसलिए यहोवा का क्रोध इसराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेनहदद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इसराइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। मेरे मित्रों, उसे संकट और विपदा का बोध हुआ और भय के कारण वह परमेश्वर के पास आया और गिड़गिड़ाया। तब हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 पद में, इसलिए यहोवा ने इसराइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के वश से छूट गए और इसराइली अगले दिनों की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। ज्यों ही राजा ने उसे पुकारा त्यों ही उसने उसकी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। उसने इसराइल को आराम के उत्पीड़न से छुड़ाया। मेरे मित्रों, आज आप और मैं समझ नहीं रहे हैं कि परमेश्वर कैसा भला है, वह आपके और मेरे लिए कैसा भला है। ओह, काश मैं और आप इस बात को जान पाते कि वह कितना महान परमेश्वर है। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 13 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, तो भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसे यरोबाम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इसराइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे और शोमरोन में अशेरा भी खड़ी रही। आराम के राजा ने तो यहोआहाज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नाश किया और रौंद रौंद के धूली में मिला दिया था। हम यहोआहाज के जीवन में परमेश्वर की भलाई को देख रहे हैं। उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने तुरंत उसे उत्तर दिया, परंतु राजा और उसकी प्रजा पाप में ही लीन रही। उन्होंने बाल देवता की उपासना की। आराम के राजा ने यहोआहाज की सुरक्षा ऐसी बिगाड़ दी कि वह अपने राज्य को सुरक्षित करने में फिर सफल न हुआ। मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा गया? निदान यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योआस उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मित्रों, यह यहोआहाज की मृत्यु का वर्णन है। यह मनुष्य का अभिलेख है। राजा मर गया, राजा चिरंजीव रहे। तब हम आगे देखेंगे इसराइल का राजा यहोआस उत्तरी राज्य के सिंहासन पर एक और राजा बैठा है। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 13 अध्याय के 10 पद में, यहूदा के राजा यहोआस के राज्य के 37वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआस शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। मित्रों, यह अध्याय उलझन का है, क्योंकि दोनों राज्यों के राजाओं के नाम एक ही हैं। अतः कौन कहां राज कर रहा है और उसके राज्य की दशा क्या है, जानना कठिन होगा। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता, परंतु परमेश्वर ने इसे ऐसा ही रखा है, क्योंकि इसमें उसका एक विशेष कारण है। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 13 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं, और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात का पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग न हुआ। ध्यान दीजिए, यरोबाम मानदंड था। जब कोई राजा पाप की अपनी सीमा पर पहुंचा तो परमेश्वर ने दंड अवश्य दिया। देखेंगे हम एलिशा की मृत्यु और उसकी भविष्यवाणी की पूर्ति। एलिशा रोगी हो गया और उसकी मृत्यु हुई। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 14 पद में, और एलिशा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। तब इसराइल का राजा एवास उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इसराइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। एलिशा उत्तरी राज्य के लिए ऐसा शक्ति का स्तंभ था जैसा एलिय्याह नहीं था। मेरे विचार में एलिय्याह के स्वर्गरोहण का समाचार राज्य महल में आनंदोत्सव का कारण था। दूसरी ओर एलिशा मेरे विचार में राजा के लिए एक सहायक सिद्ध हुआ था और उसके रोगी हो जाने के कारण राजा बहुत दुखी था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। ध्यान दीजिए, राजा का आने पर एलिशा उसकी सहानुभूति का पात्र ही नहीं था, वह अब भी परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, वह उसे परमेश्वर का संदेश सुनाता है। देखें दूसरा राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, तब उसने इसराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। मेरे मित्रों, एवास विश्वास के लिए तो जाना नहीं जाता था, परंतु वह एलिशा की मृत्यु पर रो रहा था। वह विश्वास में दृढ़ नहीं था और उसे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उसे आराम पर विजयी देगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम आगे पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें दिया तब उसने इसराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, ऐसा करने से तू तो आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। क्योंकि उसे मुक्ति के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं था, वह निराशा के कारण पीछे हटना चाहता था। मेरे मित्रों, इसी प्रकार परमेश्वर की अनुपम परियोजनाएं होती हैं, या तो पूरी नहीं होती या आरंभ ही नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर की संतान का विरोध होता है, या वह निराश हो जाता है, वह उसे त्याग देता है और कहता है, यह परियोजना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। एवास की मनोदशा भी ऐसी ही थी। उसने 3 तीर भूमि में मारे, उसके कहने का अर्थ था, मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर मुझे पार लगाएगा अर्थात विजयी बनाएगा। मैं आज बहुत डावाडोल विश्वास देखता हूं। मेरे मित्रों, मनुष्य बस बैठकर कल्पना करते हैं, वे कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, परंतु जब मैं उनसे फिर भेंट करता हूँ तो पाता हूँ कि वे वहीं बैठे हैं। परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप उसके लिए क्रियाशील हो जाएं। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको काम में लेगा तो व्यस्त हो जाएं। एलिशा हमें यहाँ एक व्यवहारिक सबक सिखाता है। तब हम आगे देखते हैं उसकी कब्र का चमत्कार। दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, मर कर भी एलिशा चमत्कारी था। उस राष्ट्र में वह कैसा शक्ति स्तंभ था। हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं के पुस्तक 13 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, यहोआहाज के जीवन भर आराम का राजा हजाएल इसराइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपने उस वाचा के कारण जो उसने इब्राहिम इसहाक और याकूब से बांधी थी उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नाश किया और न अपने सामने से निकाल दिया। परमेश्वर हजाएल के तलवार से इसराइल को दंड तो दे रहा था, परंतु उत्पीड़न को सीमा पार करने नहीं दे रहा था। हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय के 24 और 25 पद में, तब आराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र विनहदत उसके स्थान पर राजा बन गया, और यहोआहाज के पुत्र यहोआस ने हजाएल के पुत्र बिनहदत के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। एवास ने उसको 3 बार जीतकर इसराइल के नगर फिर ले लिए। मेरे मित्रों यहाँ पर देखते हैं, जो दूसरे शब्दों में जैसा उसका विश्वास था वैसा ही उसके साथ हुआ। परमेश्वर ने उसे 3 बार युद्ध में विजय प्रदान की। मित्रों यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 14 में देखेंगे, जिसका विषय है इसराइल और यहूदा के भले एवं बुरे राजा। हम देखते हैं यहूदा में अमस्याह का राज्य। अब हम यहूदा में अमस्याह का राज्य देखेंगे। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि अमस्याह एक भला राजा था, उसने 29 वर्ष यहूदा पर राज्य किया। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 पद में, इसराइल के राजा यहोआहाज के पुत्र एवास के 2वें वर्ष में यहूदा के राजा एवास का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। मित्रों ध्यान दें, यह एक तथ्य है कि एक ही नाम के 2 राजा हुए, जिसके कारण कुछ उत्पन्न होती है, परंतु समय स्मरण देखने से परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 2 पद में, जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यहोयादीन था जो यरूशलेम की थी। मेरे मित्रों अमस्याह की माता का नाम यहोयादीन था। यदि राजा अच्छे हुए तो उसका श्रेय उनकी माताओं को जाएगा और यदि वे बुरे हुए तो दोष भी उनकी माताओं को ही दिया जाएगा। अमस्याह एक भला राजा था, अतः स्पष्ट है कि उसकी माता एक अच्छी माता रही होगी, जैसे बहुत सी माताओं को आज भी हम देखते हैं जो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया, उसने ठीक अपने पिता एवास के से काम किए। मित्रों एवास का पुत्र अमस्याह अपने पिता के स्थान पर राजगद्दी पर बैठा और लिखा है कि उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य था, फिर भी वह दाऊद की तुलना में सिद्ध नहीं हुआ। हम यह भी देखेंगे कि इस युग में उत्तरी और दक्षिणी राज्य में गृह युद्ध चल रहा था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई तब वह लकीश को भाग गया, सो उन्होंने लकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजरिया को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। तब राजा अपने पुरखाओं के संग सो गया। उसके बाद अजरियाह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं अमस्याह लकीश को भाग गया, जहाँ एक गढ़ था जो शरण स्थान था, षड्यंत्रकारियों के हाथों में पड़ने से बच जाए। यरोबाम द्वितीय का इसराइल पर राज्य होता है। आगे देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 23 से 25 पद में, यहूदा के राजा एवास के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इसराइल के राजा एवास का पुत्र यरोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इसराइल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमिते के पुत्र अपने दास गथेपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि यरोबाम ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, परंतु अमिते के पुत्र योना भविष्यद्वक्ता के अनुसार इसराइल की सीमाओं का पुनरुद्वार किया गया था। हम देखते हैं योना जिसने योना नामक पुस्तक लिखी यह उसका ऐतिहासिक संदर्भ है। इससे सिद्ध होता है कि योना वास्तव में था और इसराइल का भविष्यद्वक्ता भी था। अंततः यरोबाम द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जकरयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हम राष्ट्र के पतन की ओर अग्रसर हैं। हम देखते हैं यहूदा का राजा अजरिया, जिसे हम उज्जियाह भी कहते हैं, दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 से 4 पद में पढ़ते हैं, इसराइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजरयाह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकल्याह था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह क्या करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। मेरे मित्रों, अजरयाह अनेक प्रकार से एक अच्छा राजा था, तथापि उसने वह काम किया जो उसे नहीं करना था। उसने याजक के उत्तरदायित्व को हाथ में ले लिया और इस कारण उसे कोड़ का दंड मिला, जिसे हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय उसके 15 से 21 पद में पढ़ते हैं। उसकी मृत्यु पर यशायाह अत्यधिक दुखी था, क्योंकि उसे भय था कि अजरयाह के अनुज राष्ट्र को मूर्ति पूजा में ले जाएंगे। अजरयाह के भय यथोचित थे, क्योंकि उसके पोते ने ठीक यही किया था। मित्रों, इतिहास की पुस्तकों के अध्ययन में हम उज्जियाह के बारे में सविस्तार देखेंगे। इसराइल में जकरयाह येहू का अंतिम वंशज शल्लूम द्वारा घात किया गया। जकरयाह केवल 6 महीने के ही लिए राजा हुआ। शल्लूम ने भी अच्छा काम नहीं किया, उसने एक ही महीना राज्य किया और मनहेम ने उसका तख्ता पलट दिया। मनहेम ने 10 वर्ष तक राज्य किया और यरोबाम की बुराई को वह भी दोहराता रहा। इस समय अशुरों के राजा पूल ने आक्रमण किया और मनहेम ने उसे 1000 शकेल चांदी देकर राज्य को बचाया। राष्ट्र के लिए यह एक अंधकार का युग था। उसके मरणोपरांत उसके पुत्र पकयाह ने 2 ही वर्ष राज्य किया था कि उसकी सेना के प्रधान पेकह ने षड्यंत्र रचकर उसकी भी हत्या कर दी। पेकह के राज्य काल में तिग्लिती प्लेसर अशुरों के राजा ने आकर नप्ताली के गोत्र को बंदी बनाया और ले गया। होशे ने षड्यंत्र रचकर पेकह की भी हत्या कर दी। मित्रों, हम देखते हैं कि इस बीच यहूदा में योताम राजा बना और वह एक अच्छा राजा था, जो यहूदा का राजा योताम हुआ। अब हम यहूदा का इतिहास को देखेंगे। अजरयाह अर्थात उज्जियाह का पुत्र इस समय राज कर रहा है। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। मेरे मित्रों, उसे अच्छा राजा माना गया। परमेश्वर ने उसकी माता का नाम भी लिखा है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रजा दासत्व में फिर से चली गई। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 15 अध्याय उसके 36 से 38 पद में लिखा है, योताम के और सब काम जो उसने किए, वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं? उन दिनों में यहोवा आराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने उन राजाओं के बारे में जाना है कि कौन राजा अच्छे थे और उनकी माताओं के बारे में भी देखा है कि कौन सी माताएं अच्छी थी। आज मुझे और आपको भी इस बात को जांचने और देखने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार के बेटे हैं या किस प्रकार के राजा हैं या हम किस प्रकार की माता हैं। मेरे प्रियो, जो अच्छे राजा थे उनकी माताओं का नाम आया है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज भी बच्चों को बढ़ाने में माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसमें भी माताओं का हाथ होता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में झांक करके देखें, बच्चों के जीवन को झांक करके देखें कि क्या हम उन्हें सही मार्ग दे रहे हैं या नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा हम इस बात को सीखें और अपने जीवन में अपने बच्चों को एक सही मार्ग दें, ताकि हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए महिमा के कारण ठहरें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आज आपके वचन को सुने हैं। प्रभु, उनके परिवार में जो बच्चे पाए जाते हैं, जो माता पिता हैं, आप उन्हें सही बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि अपने बच्चों को आपके डर और भय में बढ़ा सके, संसार की तमाम बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनिया और चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें, ताकि उन बच्चों के साथ उन माता पिताओं का भी नाम जुड़े, ताकि वे अपने जीवन में गर्व को महसूस करें और आपको धन्य कह सकें। आप ऐसा करेंगे इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, किया, आज से मैं उसकी